मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 नवंबर 2020 है और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब के प्रति इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कल मैंने आप सबको अपनी जो लघु कथा सुनाई थी उस पर आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं, कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं और काफ़ी प्यारी और गहरी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। देखिए प्रतिक्रिया मिलना अलग बात है लेकिन जब प्रतिक्रियाओं को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं आपके प्रिय पाठक ने इसे बहुत ध्यान से सुना है, समझने की कोशिश की है, इस पर विचार किया है और विचार करने के बाद फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखने की तकलीफ उठाई है, तो डेफिनेटली ऐसे मेल निश्चित रूप से आपको बहुत गहरे रूप से प्रभावित करते हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि आपको फिर ऐसी प्रतिक्रियाओं पर भरोसा भी होता है, आपका विश्वास गहरा होता है कि नहीं ये जो बात कही गई है ये बड़ी ईमानदारी के साथ कही गई है, केवल बहलाने फुसलाने के लिए नहीं। तो दोस्तों आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं थोड़े से इसी विषय पर केंद्रित कर रहा हूं। देखिए होता क्या है कि रचनाकार जब कोई भी रचना लिखता है, रचता है, चाहे वो कविता हो, लघु कथा हो, कहानी हो, उपन्यास हो, फिल्म हो, जब वो कुछ भी लिख रहा होता है तो डेफिनेटली वह उसकी आत्मकथा नहीं होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने सीधे सीधे इस तरफ इशारा भी किया है, वो सीधे सीधे उसकी आत्मकथा नहीं होती है लेकिन उसके हर कहने में उसकी आत्मा जरूर होती है। आत्मा का अर्थ मेरा यहां उसके अपने अनुभव जगत से है, वो घटनाएं ज्यों के त्यों उसके जीवन में नहीं घटती हैं, वो घटती हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से घटती हैं या उसका एक छोटा सा हिस्सा घटता है जिसे वो बड़ा रूप दे देता है लेकिन मर्म में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर एक मैं लेखक के रूप में ये बात कह रहा हूं कहीं ना कहीं वो खुद शामिल होता ही है और यदि वह अपनी रचना में कहीं ना कहीं खुद को शामिल कर सके तो डेफिनेटली उस रचना में जो दीप्ति होनी चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, जो ताप होना चाहिए वो अलग ही किस्म का हो जाएगा, उसकी भाषा उसी तरह से बहने लगेगी। मैं बहने लगेगी शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके कह रहा हूं, एक तो हम भाषा बोलते हैं सोच समझ कर बोलते नहीं, अगर वह उस रचना में खुद है तो मान करके चलिए कि उसकी जो रचना है वह आपको एक बहती हुई नदी की तरह दिखाई देगी, शब्द और वाक्य ऐसा लगेगा जैसे कि खुद एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं, बीच में आपको जोड़ दिखाई नहीं देगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जो विचार निकल रहे हैं या जो भावनाएं उसमें आ रही हैं वो अपने आप आ रही हैं, लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां मैंने इस बात की चर्चा विशेष रूप से इसलिए की है क्योंकि कभी कभी मेल के जरिए मुझे कुछ हमारे जो प्रिय पाठक हैं वो अपनी कविताएं भेज देते हैं, कुछ और भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है मैं उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाता वो एक अलग बात है लेकिन चूंकि वो मुझे सुनते हैं तो मुझे लगा कि इस अवसर का लाभ उठा करके मुझे यह बात भी उनके सामने रख देनी चाहिए। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे आप आज के मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट का केंद्रीय विचार भी कह सकते हैं और दोस्तों वो ये है कि जब भी आप किसी भी रचना को पढ़ें, किसी भी रचना को आप पढ़ें तो पहली बात तो यह है कि उसके साथ ईमानदारी बरतने के लिए थोड़ा सा इत्मीनान के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये जो रचना आप पढ़ रहे हैं ये सड़क के किनारे लगा हुआ कोई होर्डिंग नहीं है जिसमें कि कोई विज्ञापन छपा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में और आप देखते हैं और निकल जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि यार ठीक है ये तो फलाने फलाने का विज्ञापन था, मुझे इससे क्या लेना देना है। नहीं, अगर आपने किसी भी रचना को पढ़ने के लिए निश्चित किया है तो उसके साथ वक्त गुजारें और थोड़ा सा इत्मीनान के साथ वक्त गुजारें, उसके लिए इत्मीनान बहुत जरूरी है। जब आप इत्मीनान के साथ वक्त गुजारेंगे तब आप पाएंगे कि अब सही मायने में आप इस रचना के साथ यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं और उस जर्नी की प्रोसेस में, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप केवल जर्नी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसमें अपने आप को देख भी रहे हैं। धीरे धीरे वो जो रचना है वो एक तरह की झील बनती चली जाएगी, झील आप झील को में झांकिए तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, आप पहचान भले ही नहीं पाएंगे लेकिन आपको ये तो एहसास है ना कि नहीं नहीं ये कहीं ना कहीं मेरा चेहरा है, तो आपको उस कहानी में अपना चेहरा नजर आने लगेगा, अपना जीवन नजर आने लगेगा। और जैसे ही आपको ये लगेगा कि नहीं यार इस कहानी में कहीं ना कहीं मैं भी हूं, कभी कभी तो ये भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहानी बिल्कुल मेरे ऊपर ही लिखी गई है, ये बात मेरे लिए ही कही गई है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। तो जैसे ही आपको यह लगेगा कि इस कहानी में तो मैं हूं या ये कहानी मेरी है, तो सीधी सी बात है कि आपका अपनत्व बोध बढ़ जाएगा, वो चीज आपको अब अपनी लगने लगेगी ना। आप होटल के कमरे में जाते हैं, ठीक है किसी तरह से रह करके चले आते हैं, किराया देते हैं, बात खत्म हो गई, लेकिन आप अपने घर में उसी तरह से नहीं रहते। आप देखिए कि घर की आप कितनी संभाल करते हैं, कोई टूट फूट होती है तो उसे आप बनाते हैं, होटल में आप ऐसा नहीं करते क्योंकि होटल के साथ आप लगाव महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर के कमरों के साथ आप लगाव महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि आपके जो घर का कमरा है होटल के कमरे की तुलना में बहुत खराब है, बेकार है, अनुपयोगी है, उतना सुविधाजनक नहीं है, इसके बाद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है अपना कमरा, अपने घर का कमरा, क्योंकि आपका अपना है, यानी कि आपका व्यवहार उसके साथ बदल जाएगा। रचना के साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही आपको लगेगा कि ये रचना तो मेरी है, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अब क्या करेंगे आप? अब मैं आप अपनी आखिरी बात आपसे कह रहा हूं कि अब आप उस रचना से सहमति और असहमति के स्तर पर अपना संबंध कायम मत कीजिए कि नहीं नहीं मुझे ये रचना अच्छी लगी या ये रचना बेकार लगी या ये रचना महान है या नो, आप इस रचना से सहमत हैं या इस रचना से असहमत हैं, यहीं तक सीमित मत रखिए, क्योंकि यहां तक अगर आप सीमित रख देंगे तो ये मान करके चले कि आपने इत्मीनान के साथ जो वक्त गुजारा है उस वक्त का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सहमति असहमति के स्थान पर चिंतन होना चाहिए। आप अब उस रचना पर विचार करें, क्योंकि जो रचनाकार है आपके सहमति असहमति के लिए रचना नहीं लिखता है, वो आपके चिंतन के लिए रचना लिखता है। आपने इसमें क्या समझा, क्या देखा, क्या झांका, क्या पाया, वह महत्वपूर्ण है। और कल मुझे जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं एक छोटी सी लघु कथा पर, तो मैं यह पढ़कर दंग रह गया कि इसने जो इस रचना में समझा है उस हिसाब से तो मैंने रचना लिखी ही नहीं थी, लेकिन जो उसने समझा है वो सही है, उसने गलत नहीं समझा है, उसने अपने ढंग से समझा। इसका मतलब है कि उसने मेरी लघु कथा को ज्यादा कीमती बना दिया, ज्यादा वजनदार बना दिया, मल्टी डायमेंशनल बना दिया, क्योंकि उस पर आपने विचार किया और विचार करने के बाद जो आपको लगा वो आपने मुझे लिख दिया। जबकि जब मैं लिख रहा था तो वो बातें मेरे दिमाग में नहीं थी, और मुझे लगता है कि यही किसी भी रचना की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसलिए मैंने कहा फ्रेंड्स कि आप सब उस पर विचार भी करें, और आप जानते हैं कि मैं जितनी भी बातें आप लोगों के सामने लाइफ मैनेजमेंट के तहत रखता हूं, हमेशा निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें। आप जब विचार करेंगे तभी आप अपने लिए अपने ढंग से उसमें से बातें निकाल पाएंगे, और वही आपके काम की बातें होंगी। तो मित्रों, आप लोगों ने अपने प्रतिक्रिया के द्वारा मुझे यह एक नया विषय अप्रत्यक्ष रूप से सुझाया कि मैं आप सबसे इस मुद्दे पर बात करूं। मैंने बातें की हैं, अब आप फिर से मेरी इस बात पर विचार करें और मुझे अब अनुमति भी दें। नमस्कार।